अयि मित्रगणाः, नमस्करोमि तथा च स्वागतं व्याहरामि। अर्थात हे मित्रगण, मैं नमस्कार करती हूँ तथा सबका स्वागत करती हूँ। एषः रेडियो मधुबनस्य श्राव्यमञ्चः। अहं लीना महेन्दळे आरम्भं करोमि अस्माकं प्रति रविवारस्य कार्यक्रमं पठामि संस्कृतम् इति। अर्थात यह रेडियो मधुबन का श्राव्य मंच है और मैं लीना महेन्दळे आरंभ करती हूँ अपना प्रति रविवार का कार्यक्रम पठामि संस्कृतम्। अत्र वयं शिवमहिम्नस्तोत्रं पठिष्यामः। अर्थात यहाँ हम शिवमहिम्नस्तोत्र की पढ़ाई करेंगे। शृण्वन्तु भवन्ताम्, अर्थात आप सब सुनिए। तो मित्रगण, यह थोड़े से प्रारंभिक वाक्य आपने संस्कृत में सुन लिए और अर्थ भी समझ लिया। अब आते हैं शिवमहिम्नस्तोत्र के अगले श्लोक पर, जो कि कवि पुष्पदंत का रचा हुआ एक अत्यंत सुमधुर स्तोत्र है। शिव जी के लिए यह गाया गया है। पुष्पदंत कहता है, कृश परिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेदं क्वच तव गुण सीमोल्लंघिनी शश्वद्रुद्धिः इति चकितम मंदी कृत्य मां भक्तिराधात् वरदचरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम्। क्या अर्थ हुआ इसका? तो पुष्पदंत कहता है, कृश परिणति चेतः, अपनी बुद्धि के विषय में कहता है कि मेरी जो बुद्धि है, चेतना है, वह कोई खास प्रगत ऐसी नहीं है, उसका कोई बहुत अधिक विकास हुआ हो ऐसा नहीं है, वह बहुत ही सामान्य या बहुत ही अविकसित ऐसी मेरी बुद्धि है। क्लेशवश्यम, और वह क्लेश से भरी हुई भी है। क्वचेदम, क्वच इदम, तो कहाँ एक तरफ मेरी ऐसी कमजोर बुद्धि, और क्वच तव गुण सीमोल्लंघिनी शश्वद्रुद्धि ही, और दूसरी तरफ कहाँ तुम्हारी गुण सीमोल्लंघिनी, सीमोल्लंघिनी अर्थात असीम, अपार, तो जिसके अपार गुण हैं, ऐसी शश्वत रुद्धि ही, अर्थात चिरंतन जो रुद्धिंगत होता है, जिसकी निरंतर वृद्धि होती है, जिसके गुणों की निरंतर बढ़ोतरी होती है, ऐसे एक तरफ तुम, तो कहाँ ऐसे तुम जिसके गुणों की सीमा असीम होते हुए भी फिर भी निरंतर बढ़ती जा रही है, और कहाँ मैं जिसकी बुद्धि बहुत ही अपरिपक्व है, बहुत ही अविकसित है। लेकिन इति चकितम मंदी कृत्यमाम भक्तिराधात्, अर्थात इति चकितम अमंदी कृत्य माम भक्ति ही आधात् वरद चरणयोस्ते, तो इति चकितम माम, ऐसा सोच करके जो मैं चकित या व्याकुल या भयभीत हो गया कि कहाँ तुम और कहाँ मैं, तो मैं तुम्हारी स्तुति कैसे गा पाऊँगा, यह सोच करके जो मैं चिंतित हो गया, व्याकुल हो गया, तो ऐसे मुझे इति चकितम माम, ऐसे मुझे भक्ति ने, तुम्हारी भक्ति ने अमंदी कृत्य, अर्थात मेरा डर मिटा दिया, मेरी चिंता मिटा दी, और आधात अर्थात मुझे बाध्य कर दिया कि मैं हे वरदाई शंकर, हे वर देने वाले शंकर, चरणयोस्ते वाक्य पुष्पोपहारम, मेरी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं तुम्हारे चरणों पर, चरणयोस्ते तुम्हारे चरण युगल पर अपने वाक्य पुष्पोपहारम, ये मेरे वाक्य रूपी जो फूल हैं, इन्हें मैं तुम्हारे चरणों पर उपहार स्वरूप चढ़ाऊं, ऐसा मेरी भक्ति ने मुझे विवश कर दिया, बाध्य कर दिया, या ये कह सकते हैं कि धीरज देते हुए मुझे बाध्य कर दिया, वरना मैं तो व्याकुल था कि कहाँ एक तरफ मैं और कहाँ एक तरफ तुम, तो मैं तुम्हारे गुणों का वर्णन कैसे कर पाऊंगा। अगले श्लोक में पुष्पदंत कहता है, असितगिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधुपात्रम सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूर्वी लिखति यदि गृहीत्वा सारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति। तो यहाँ मैंने तीसरी पंक्ति में एक पाठ भेद पढ़ा है, क्योंकि मैंने बचपन में जिस पुस्तक से यह स्तोत्र पढ़ा था उसमें सारदा शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन अन्य कई स्थानों पर शारदा शब्द का प्रयोग है। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, तो देखते हैं इस श्लोक का क्या अर्थ होता है। असितगिरि समम स्यात्, स्यात् का अर्थ हुआ यदि, अगर ऐसा हो, और असितगिरि समम कज्जलम यानि एक बहुत बड़े काले चूर्ण का पर्वत हो जो काजल के रूप में उपलब्ध हो, क्योंकि स्याही बनाने के लिए काले काजल की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्याही का एक बहुत बड़ा पर्वत के जितना बड़ा एक ढेर उपलब्ध हो, और सिंधु पात्रम स्याही घोलने के लिए पात्र के रूप में और घोलने के लिए जो पानी की आवश्यकता होती है उसके लिए भी अगर सिंधु हो स्वयं, अर्थात समुद्र का उपयोग किया जाए, तो ऐसे समुद्र के पानी में उस बहुत बड़े विशाल पहाड़ की स्याही को डुबो करके उनको मिला करके उस घोल की स्याही अगर बनाई जाए, और सुर तरुवर शाखा लेखनी, लिखने के लिए जो लेखनी चाहिए उसके लिए सुर तरुवर की शाखा का उपयोग किया जाए। तो सुर तरुवर क्या हुआ, तो देवताओं के पास स्वर्गलोक में जो एक विशाल कल्पवृक्ष है उसकी शाखा को ही, उसकी एक डंडी को ही अगर लेखनी बना दिया जाए, और पत्रम उर्वी, उर्वी अर्थात धरणी, यह पृथ्वी जमीन, तो पृथ्वी को ही पत्र बना दिया जाए, अर्थात वह कागज जिस पर लिखा जाता हो। इतना विशाल कागज है पृथ्वी, इतनी विशाल लेखनी है जो कि कल्प वृक्ष की एक शाखा से ही बनी हुई है, और इतना विशाल काजल जिसका ढेर पहाड़ के जितना है, और घोलने के लिए समुद्र है तो उसके पूरे पानी में उस काजल को घोल करके स्याही बनाई गई है। इतनी भारी मात्रा में सब चीजें उपलब्ध हैं, और लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम, ऐसी लेखनी को हाथ में ले करके, गृहीत्वा यदि लिखति, अगर लिखती है, कौन लिखती है, तो शारदा अर्थात जो स्वयं विद्या की देवी है शारदा, सर्वकालम मतलब वो हमेशा लिखती ही चले, तदपि तव गुणानाम ईश पारम न याति, अर्थात हे ईश्वर फिर भी तदपि तव गुणानाम तुम्हारे गुणों का कोई पार नहीं लग सकता है। तो ऐसा तुम्हारा गुण वर्णन है कि सर्वकाल के लिए भी शारदा जो स्वयं विद्यादायिनी है वह लिखती रहे, और इतने अधिक संसाधन उपलब्ध करा करके वो लिखती रहे, फिर भी तुम्हारे गुणों का कोई पार नहीं लग सकता, तुम्हारे गुणों का वर्णन पूरा नहीं हो सकता। तो मित्रों, जो मैंने याद किया था वहाँ शारदा की जगह सारदा शब्द था, और बहुत सुंदर यह शब्द भी है, क्योंकि सारदा ये भी शारदा का ही एक दूसरा नाम है, और सारदा का अर्थ हुआ वह विद्या की देवी जो केवल सार भूत बातों को ही लिख रही है, पूरी बात फैला करके भी नहीं लिख रही, केवल सार तत्व को ही लिखती चल रही है, फिर भी तुम्हारे गुणों का पार नहीं लग सकता है। तो हे शिव, हे ईश्वर, ऐसी तुम्हारी महिमा है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर तरीके से पुष्पदंत ने शिव जी के गुणों का यहाँ वर्णन किया है। मित्रों, आज के पाठ को हम यहाँ विराम देंगे, विरमामि अहम, अर्थात मैं अब विराम देती हूँ। तुम सुनते रहो पठामि संस्कृतम, अगले रविवार की प्रतीक्षा करो, सुनते रहो रेडियो मधुबन, मुस्कुराते रहो, नमस्कार।